हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल रावल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड सीजन ऑफ कॉफी टेबल स्टोरीज। मैं सीजन की शुरुआत एक बहुत धमाकेदार एपिसोड से करना चाहता था और उसके लिए आज हम रिकॉर्डिंग भी करने वाले थे, बट फॉर सम रीज़न हम आज वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट मुझे लगा कि मुझे आज ये स्टार्ट तो करना ही है। मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, और बहुत ही बढ़िया किताब है और इनके ऑथर का नाम है मॉर्गन हाउसल। और ये नाम से ऐसा लगता है जैसे ये किताब पैसों के ऊपर है या मनी के बारे में, बट ऐसा नहीं है। दिस बुक इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप विद मनी, राइट? दिस बुक इज़ अबाउट हैप्पीनेस, वेल्थ एंड ग्रीड। सो बहुत सी इसके अंदर ऐसे लेसन हैं जो कि विच विल हेल्प यू इन योर मनी मैटर्स एंड एज वेल एज इन लाइफ इन जनरल एज वेल। मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये किताब रिकमेंड करी है और मैं चाहता हूँ तहे दिल से कि हर कोई ये बुक पढ़े, पर मुझे पता है कि बहुत लोग बुक रीड नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो इसी में से आज एक स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ टू स्टार्ट विद दिस सीज़न। सो प्रॉब्ली इन द फर्स्ट एपिसोड लेट्स यू नो टॉक अबाउट दिस स्टोरी। तो ये स्टोरी है एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की जिसके बारे में हम सब जानते हैं, बिल गेट्स, यू नो द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी, जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं या फिर उनके बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे वो और बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ होंगे उनके पास, बहुत ही ज़बरदस्त इंटेंशन होगी जिस वजह से वो इतना कुछ लाइफ में कर पाए, विच इज़ ट्रू। क्योंकि इन तीनों के बिना, यू नो, वो इंटेलेक्ट, वो हार्ड वर्क, वो इंटेंशन के बिना आप लाइफ में इतना कुछ नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। बट दो ऐसी और चीज़ें हैं जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करती हैं हमारे सक्सेसफुल होने में या फिर हमारे फेल होने में किसी किसी चीज़ में, और हम हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल या फेल नहीं होते। उस पर हम बाद में आएंगे, किसी और चैप्टर को हम किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर मैं लक और रिस्क, वो दो एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बिना हमारा सक्सेस और फेलियर डिसाइड नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा बिल गेट्स की स्टोरी के थ्रू, ठीक है? तो हम 1968 की बात करते हैं, जब जिस टाइम पे बिल गेट्स हाई स्कूल में थे। उस टाइम पे, यू नो, ग्लोबल आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 30 करोड़ पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे थे जो कि उस टाइम पे हाई स्कूल में थे, जिनमें से 1 करोड़ 80 लाख जो बच्चे हाई स्कूल में थे उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे। जिसमें से अगर हम और फर्दर उसको फिल्टर करें तो 2,70,000 बच्चे उस टाइम पे वॉशिंगटन एरिया में थे जो कि हाई स्कूल में थे। हम थोड़ा और अंदर आते हैं तो तकरीबन 1 लाख बच्चे सिएटल एरिया के अंदर थे जो कि हाई स्कूल में पढ़ते थे। और सिएटल एरिया के अंदर, जहाँ पे एक छोटा सा टाउन जहाँ पे बिल गेट्स का स्कूल था, वो एक ऐसा स्कूल था जो कि एक इकलौता स्कूल था पूरे सिएटल एरिया के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर था, ठीक है? और उस स्कूल में सिर्फ 300 बच्चे पढ़ते थे, और उन 300 बच्चों में से बिल गेट्स और पॉल एलन्स थे जो कि दोनों, जिन दोनों ने आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट शुरू करी, ठीक है? तो पर हम नहीं जानते एक और बात कि बिल गेट्स और पॉल एलन्स के साथ एक उनका तीसरे दोस्त भी थे जिनका नाम था केंट इवेंस। और ये तीनों दोस्त कंप्यूटर में बहुत अच्छे थे और कहीं ना कहीं कंप्यूटर क्लासेस के दौरान ही या उस टाइम पे कंप्यूटर पे काम करते करते ही इनको समवेयर इंस्पायर हुए और आगे जाके इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई। बिल गेट्स और पॉल एलन्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई। केंट इवेंस के साथ क्या हुआ हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पर जब मैं याद करता हूँ कि जब मैं स्कूल में था और मैं अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर क्लास में जाता था, तो हम ज़्यादातर सिर्फ पेंट खोल के और छोटी मोटी पेंटिंग बना के बाहर आ जाते थे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें शायद इंटरेस्ट भी नहीं था और या हम सोच नहीं पाते थे इतने दूर तक कि, या इतनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे माइंड में नहीं थी कि हम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, जो कि शायद सही नहीं था। बट बच्चे थे और हम, मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ अब कि हम लोग बच्चे थे इसलिए हम नहीं सोच पाए। बट कमिंग बैक टू बिल गेट्स और पॉल एलन्स और केंट इवेंस, तो एक बार क्या हुआ, एक बार स्कूल वालों को अपना पूरा जो स्केड्यूल था वो डिसाइड करना था, पूरा बनाना था डिजिटल तरीके से, जो कि स्कूल को प्रॉब्लम होती है वो नहीं बना पा रहे थे। तो उन्होंने ये काम इन तीनों को दिया करने के लिए, और इन तीनों ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी कंप्यूटर के थ्रू इन्होंने स्कूल के लिए पूरा जो टाइम टेबल है, पूरा स्केड्यूल है, वो बना के दे दिया। स्कूल वाले भी बहुत खुश, और ये करने के बाद इन तीनों को भी समझ आया कि हम कंप्यूटर के थ्रू हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। समवेयर समथिंग क्लिक्ड यू नो इन देयर माइंड्स। बट अगर हम देखें इसके अंदर पूरे इस कहानी में, तो हमने बात करी थी, हम शुरू हुए थे 30 करोड़ बच्चे जो कि 1968 में ग्लोबली हाई स्कूल में थे, उनमें से सिर्फ हम फिल्टर करते करते आए तो हम पहुंचे सिर्फ लेक साइड स्कूल में, एक ऐसा स्कूल, इकलौता स्कूल जहाँ पे कंप्यूटर था, वहाँ सिर्फ 300 बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं बिल गेट्स भी बहुत लकी थे, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उस स्कूल में गए जहाँ पे कंप्यूटर था। क्योंकि अगर उनको मे बी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मे बी उन्होंने कंप्यूटर नहीं देखा होता दैट अर्ली इन लाइफ, तो मे बी वो इंस्पिरेशन भी ना ही होती माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाने की, राइट? सो कहीं ना कहीं वन इन अ मिलियन वाला जो केस था, लक थी उनके केस में काम करी। अब आते हैं दूसरा एस्पेक्ट, विच इज़ रिस्क। अब देखते हैं कि रिस्क कैसे प्ले आउट करता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे सक्सेस और फेलियर्स के अंदर। तो केंट इवंस जो कि तीसरे दोस्त थे इनके, वो भी बहुत होशियार थे, और अगर हम बिल गेट्स के, अगर आप उनके इंटरव्यू सुने या उनकी बात समझें, तो वो कहते हैं कि शायद इन बिल गेट्स और पॉल एलन से भी ज़्यादा समझदार थे केंट इवंस, और वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे। वो एक हमेशा से वो बताते हैं कि स्कूल भी एक बड़ा सा जो लॉयर बैग होता है वो लेके आते थे, और एक यू नो ही हैड दैट करिश्मा विद हिम। तो और उनका एक था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बट यू नो डेस्टिनी हैड इट्स प्लान्स। एक बार वो एक स्कूल के साथ किसी एक माउंटेनियरिंग समिट में गए, एंड इन वन ऑफ द एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज लाइफ। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के इन आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो ये भी जो प्रोबेबिलिटी है ये वन इन अ मिलियन की है कि कोई यू नो इन अ माउंटेनिंग समिट समवन लूजिंग हिज लाइफ, दैट प्रोबेबिलिटी इज वन इन अ मिलियन। तो जो लक पॉजिटिवली प्ले किया बिल गेट्स के केस में वन इन अ मिलियन, वहीं पे वही रिस्क प्लेड आउट किया केंट इवंस के केस में वन इन अ मिलियन रेशियो में, बट दोनों के केस में बहुत ही एक्सट्रीम कंट्रास्टिंग तरीके से काम किया। तो यू नो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम कभी भी यू नो वी गेट वेरी ओवरवेल्म्ड लुकिंग एट समवन एल्सेस सक्सेस, और इवन इन आर ओन सक्सेस समटाइम्स इट गेट्स टू आर हेड, या हम किसी और की सक्सेस देखिए या तो हम बहुत उसको आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं या फिर हम बहुत जलस हो जाते हैं। एंड सेम विथ फेलियर्स, यू नो समटाइम्स हम किसी को फेलियर किसी का देख के या अपने फेलियर के साथ भी, या तो हम किसी के फेलियर में हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं कि वो शायद मेहनती नहीं होंगे, हार्डवर्किंग नहीं है, इंटेंट नहीं होगा, और अपने केस में भी हम अपने आप को भी बहुत डिमीन करना शुरू कर देते हैं, एंड बहुत केसेस में हम डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई थिंक इन बोथ द केसेस, बी इट सक्सेस और फेलियर, यू नो वी डिस्काउंट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लक एंड रिस्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यू नो अपना रोल प्ले करते हैं कि हमारी जो जो पारी है वो किस साइड बैठेगी। तो आगे से अब मतलब नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी समवन और योर सेल्फ गेटिंग सक्सेसफुल, और यू सी अ फेलियर इन योर सेल्फ और इन समवन एल्स, जस्ट डोंट गेट कैरिड अवे, इट देर कैन बी मैनी रीजन्स। ठीक है, सो मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहता था कि ये कहानी मैं सबके साथ शेयर करूँ, बट आगे आने वाले एपिसोड में हम बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज, बहुत अच्छे अच्छे थीम्स पे पॉडकास्ट और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वर्सेशंस लेके आने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपने मेरा चैनल और ये पॉडकास्ट सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये अपने दोस्तों के साथ, आप जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आप खुद भी कुछ सुनेंगे और यू नो आगे लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।